अहाना नहा कर निकली तब तक फलक जाग चुकी थी। उसने अहाना को टाइटली हग करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया, फिर बाथरूम में चली गई। उसका वो वार्म हग जिसमें अपनेपन का एहसास खुला था, अहाना के लबों पर मुस्कान बनकर बिखर गया। पर ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और अहाना की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। उसने पलटकर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर परेशान निगाहों से खुद को देखा। अभी तक वो तैयार नहीं हुई थी, नई दुल्हन थी, ऐसे सामना जाना ठीक होगा या नहीं, इस उलझन में उलझी वो कुछ पल परेशान निगाहों से दरवाजे को देखती रही। फिर भीगे बालों को टावल से आज़ाद किया और झट से सर को पल्लू से ढकते हुए आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, पर खुद दरवाजे के पीछे हो गई। तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? फलक कहाँ है? एक सख्त रौबदार आवाज़ अहाना के कानों से टकराई तो उसने घबराकर निगाहें उठाईं। सामने रूपाली जी खड़ी थीं और उनके चेहरे पर नागवारी के साथ साथ रोष के भाव भी मौजूद थे। वो फलक बाथरूम में गई है, इसलिए हमने दरवाज़ा खोल दिया। बेचारी अहाना का घबराहट के मारे बुरा हाल था। रूपाली के सख्त तेवर देखकर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। जवाब सुनकर रूपाली जी की तनी बौहें कुछ सामान्य हुई, पर चेहरे पर कठोर भाव बरकरार रखते हुए उन्होंने तीखी निगाहों से ऊपर सर से लेकर पैर तक घूरा। ये कैसे तैयार हुई हो तुम? एक दिन ही दुल्हन हो, न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र, न कोई साज सिंगार किया है और न ही गहने पहने हैं। ऐसे सबके सामने जाकर हमारी और हमारे परिवार की नाक कटाना चाहती हो? नई नवेली दुल्हन ऐसे तैयार होती है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? पहले ही दिन सास की फटकार पड़ी तो मन भराया, बात सीधे माँ के संस्कार पर पहुंची, जिससे दिल आहत हो गया। आंखों में आई नमी छुपाते हुए उसने निगाहें झुकाईं और धीमे स्वर में जवाब दिया, मम्मी जी अभी बस नहाकर आए हैं, तैयार नहीं हुई हैं, होने जा रही थीं, पर दरवाजे पर दस्तक हुई तो यहाँ आ गई। लो, बाहर ढोलक वाले आ गए, सब मंदिर जाने को तैयार हैं, आकर मुँह दिखाई भी करनी है, और अभी तक तुम तैयार ही नहीं हुई हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छी सी भारी सी साड़ी पहनना। तुम्हारे मायके से तो तुम्हें कुछ मिला नहीं, पर हमने तो शादी में इतने गहने चढ़ाए हैं, सब पहन कर आना। फलक तो कहना कि तुम्हें ठीक से तैयार कर दे, किसी को हमारी बहू में कोई कमी निकालने का मौका नहीं मिलना चाहिए। याद रखना, ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है, ससुराल है तुम्हारा, यहाँ तुम्हें हमारे हिसाब से रहना होगा और हमारे घर की इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा को बनाए रखना होगा। जी मम्मी जी। बेचारी अहाना उनके गुस्से और सख्त रवैये से इतनी घबरा गई कि उसकी जुबान जरा लड़खड़ा गई, और इस पर रूपाली जी फिर उस पर बरस पड़ी। बाहर लोग कुछ पूछें तो ऐसे हकलाने मत लगना, अगर तुम्हारे कारण सबके सामने हमारा अपमान हुआ, लोगों को हम पर हंसने और तंज कसने का मौका मिला, तो हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। सर झुकाए खड़ी अहाना ने अब की बार बस सर हिला दिया। रूपाली जी ने गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरा और कमरे से बाहर निकल गई। अहाना ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल पर रूपाली जी की कही बात कहीं गहराई में चुभी थी कि उसके माँ बाप ने उसे कुछ दिया नहीं। मांग के टीके से लेकर पैरों के बिछुए और नाक की लौंग तक सब तो दिया है उन्होंने उसे, फिर भी उनका यूं अपमान किया जा रहा था। अहाना का दिल भराया, पर उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही सुखा लिया और बैग से दूसरी भारी सी साड़ी निकालने लगी। सारी खुशी पल में गायब हो गई थी और अब रुख पर सिर्फ उदासी झलक रही थी, जिसे उसने छुपाने की बहुत कोशिश की थी। कुछ देर बाद अक्षय की चाची की लड़की फलक को भाभी को लेकर आने को कह गई। फलक ने अहाना के चेहरे को घूंघट से ढका और सुहाग की लाल चुनरी ओढ़ाकर बाहर ले आई, जहां सब मंदिर जाने के लिए तैयार थे। अक्षय भी दिल में अपनी नई नवेली दुल्हन के दीदार की ख्वाहिश लिए वहां पहुंचा, पर जब अहाना के हसीन चेहरे को घूंघट के पीछे छिपा पाया तो सारे अरमान एक झटके में धराशाही होकर फर्श पर बिखर गए और कमबख्त महबूब के दीदार को तलबगार आंखों में मायूसी उतर आई। क्या हुआ भाई? अभी तक ताज़े तरबूज जैसा खिला चेहरा एकदम से सूखा अमरूद जैसे बन गया। अन्वय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शरारत से फुसफुसाया। अक्षय ने तिरछी निगाहों से पल भर उसे घूरा, फिर हाथ झटकते हुए आगे बढ़ गया। अन्वय की मुस्कान गहरी हुई, अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो भी उसके पीछे चल दिया। पैदल ही सब मंदिर की ओर बढ़ गए। ढोलक वाले अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। दुल्हन और दुल्हन को चारों ओर से घेर कर चलती महिलाएं गीत गा रही थीं। मंदिर में उन्हें 1.5 घंटे लगे। घर लौटे तो यहाँ भी अहाना और अक्षय से साथ में पूजा करवाई गई। अहाना से भजन गवाया गया, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान।
यही भजन गाया था उसने। अभी तक नई दुल्हन का चेहरा तो किसी को देखना नसीब न हुआ था, पर उसकी कोमल सी मधुर आवाज सबका मन मोह गई थी। वो भारी सी साड़ी संभल भी नहीं रही थी बेचारी से, उस पर थोड़ी तक घूंघट भी था। बेचारी फलक ही हर जगह उसकी मदद कर रही थी। पूजा के बाद उसने और अक्षय ने मिलकर सबको आरती व प्रसाद दिया। उसके बाद लड़कों को वहां से भगाया गया। आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ चुकी थी। रूपाली जी उनकी मेहमान नवाजी की तैयारी भी कर चुकी थी। आहाना को उन सब औरतों के बीच लाकर बिठा दिया गया। मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत दादी ने की। उन्हें तो आहाना बहुत पसंद थी। चांद सी दुल्हन को उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। जो उसे देखता उसके रूप रंग नयन नक्श की तारीफ करने से खुद को रोक ना पाता। आहाना को सबसे पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना था। उससे सवाल जवाब भी पूछे जा रहे थे, मानो उसका टेस्ट चल रहा था। खैर, आहाना ने बड़ी ही शांति, समझदारी और धैर्य के साथ हर सवाल का सटीक जवाब दिया था। और उसे देखने आई महिलाएं रूपाली जी की किस्मत से रश्क करने लगी थी, जो इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी और गुणी लड़की बहू बनकर उनके घर आई। आहाना ने सबका दिल जीत लिया था, बस एक रूपाली जी उससे संतुष्ट नहीं थी। मुंह दिखाई के बाद नाश्ता वगैरह हुआ, उसके बाद बाकी रस्में निपटाई जाने लगी और आज का दिन इन्हीं सब में बीत गया। गुड़िया जैसी सजी आहाना को पल भर आराम करने का वक्त न मिला और न ही घर पर बात कर सकी। शाम को जाकर उसे फलक के कमरे में भेजा गया। उसका डिनर भी वहीं पहुंचाया गया था। माँ, इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो भाभी को घर आई बस एक ही दिन हुआ है। ये फलक थी जो रूपाली जी के पीछे पीछे बाहर लॉन तक चली आई थी। असल में बात यह हुई थी कि रूपाली जी अंदर दादी से आहाना के चूल्हा पूजन की रस्म कल करवाने की बात करके आई थी, जिस पर सभी खुशी खुशी राजी हो गई थी। और उनकी रजामंदी की सबसे अहम वजह ये थी कि उसके बाद सबको अपने अपने घर लौटना था, तो जाने से पहले नई दुल्हन के हाथों का स्वाद चखने का मौका कोई नहीं चाहता था। जल्दी ये है कि अभी तुम्हारी दादी चाची सब यहाँ हैं, तो उनके सामने सब रस्म पूरी हो जाएगी। फिर जितनी जल्दी बहू रसोई और गृहस्थी संभाल ले उतना ही अच्छा है। वैसे भी हफ्ते 10 दिन बाद उसे वापस जाना है। फिर कब आएगी और कब तक हम अकेले सारी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? बहू आई है तो कुछ जिम्मेदारी वो भी संभालेगी। धीरे धीरे करना शुरू करेगी, तभी आगे चलकर सब संभाल पाएगी। माँ, आपकी बात ठीक है, पर ये बहुत जल्दी है। इतनी जल्दी उन पर रसोई और घर की जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। क्या सोचेंगी वो कि शादी के एक दिन बाद ही रसोई में ले जाकर खड़ा कर दिया? हम कोई अनोखी रीत नहीं चला रहे, सब जगह ऐसा ही होता है। हमारी सास ने भी ऐसा ही किया था और तुम्हारी सास ने तो शादी के अगले दिन से सब जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती थी।
वैसे भी शादी का घर था, 100 काम फैले हैं, इतने मेहमान हैं। तुम तो परसों चली जाओगी, अगर उसे भी महारानी बनाकर कमरे में सजाकर रखेंगे तो ये सारे बिखरे काम कौन समेटेगा? मैं अकेले क्या क्या करूंगी? घरी बहू है, थोड़ा काम में हाथ बटा देगी तो मेरा बोझ भी हल्का होगा और घरदारी भी चलेगी। आगे सब उसे ही तो संभालना है। फलक उनकी दलीलों के आगे हार गई और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही रूपाली जी के लबों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। आदत थी उन्हें, जो चाहती थी वही करती थी, अपनी बात मनवाकर ही रहती थी। इस घर में उनका राज चलता था, तभी तो अपनी सास से उनकी ज्यादा बनती नहीं थी। यहां भी वो अपनी बात मनवाकर ही मानी थी और अब उनकी पूरी तैयारी थी कि आहाना को अपने नीचे दबा कर रखें। आखिर अपनी सत्ता यूं ही हाथ से कैसे जाने दे सकती थीं वो? सो पहले दिन से वो अपनी प्लानिंग को अंजाम देने लगी थी। उनकी कुटिल बुद्धि और षड्यंत्रों से पूरी तरह से अनजान अक्षय इस वक्त अन्वय के रूम में था। उसे उसके रूम से बेदखल कर दिया गया था और उसे कंपनी देने के लिए सुमित को उसके पास छोड़ दिया गया था। फाइनली अब उसका इंतजार खत्म होने वाला था। उसे आहाना को जी भर कर देखने, उसके साथ अकेले में वक्त बिताने का मौका मिलने वाला था, इसलिए वो बेहद खुश और एक्साइटेड था। एक तरफ लड़कियां आहाना को तैयार करने गई थीं, तो दूसरी तरफ अन्वय ने अपने भाइयों संग अक्षय के कमरे पर कब्जा किया हुआ था और आज की स्पेशल रात के लिए उसके कमरे को डेकोरेट कर रहे थे। सारी तैयारी करने के बाद अन्वय ने अंतरा को वीडियो कॉल लगा दी और पूरा कमरा दिखाते हुए बोला, अंतरा, अच्छे से देखकर बताओ, कोई कमी तो नहीं लग रही? अंतरा ने पूरे कमरे को देखा और दिलकशी से मुस्कुरा उठी। नहीं, सब कुछ एकदम झक्कास है, बस तुम एकदम बकवास लग रहे थे। अंतरा ने अन्वय को देखते हुए बुरा सा मुंह बनाया। उसकी नौटंकी पर अन्वय भौं सिकोड़े उसे नाराजगी से घूरने लगा। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती ना? बहुत मजा आता है ना तुम्हें हर बार मुझे छेड़ने और मुझसे पंगे लेने में? बहुत, अंतरा ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अन्वय अफसोस से सर हिलाकर रह गया। तुम इस दुनिया का 8वां अजूबा हो, जानती हूँ। एक बार फिर वही लापरवाही भरा अंदाज और दिल जलाने वाली कातिलाना मुस्कान, जिसे देखकर अन्वय चिढ़ उठा। अंतरा, तुम्हें मुझसे परेशानी क्या है? क्यों हमेशा ऐसी चिढ़ी रहती हो? अंतरा ने तपाक से जवाब दिया, परेशानी तो कोई नहीं, बस मुझे तुमसे पंगे लेने में, तुम्हें चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तुम ही तो कहते हो कि मेरे यही तीखे तेवर और अंदाज पसंद है तुम्हें, तभी मुझसे दोस्ती की है, तो अब भुगतो। लगता है अब जिंदगी भर भुगतना ही पड़ेगा, अन्वय खींचते हुए खुद में बड़बड़ाया, जो अंतरा सुन न सकी। और अगले ही पल उसने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए सवाल किया, क्या कहा तुमने?
कुछ नहीं कहा, बाद में बात करता हूँ तुमसे, अभी कुछ बचे हुए काम निपटाने हैं। अन्वय ने बात बदली। अंतरा ने भी नासमझी से कंधे उचकाते हुए बाय कहा और फोन काट दिया। बाकी सब वहां से काम खत्म करके जा चुके थे तो अन्वय भी अक्षय के पास चला आया।